नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। बेल्जियम की एक अदालत ने 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। यूक्रेनी शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 6 लोगों की मौत। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र पर मिसाइल और हवाई हमले का दावा किया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंचा, वार्षिक वन वृद्धि में 3रे स्थान पर बना हुआ है। और इंदौर में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। समाचार विस्तार से। बेल्जियम की एक अदालत ने 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा है। चौकसी ने अदालत में दलील दी थी कि उसे एंटीगा से कथित तौर पर अगवा किया गया था और उसे भारत में राजनीतिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का खतरा था। अदालत को उसके दावों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के 16वें सत्र में भाग लिया। श्री गोयल ने सत्र को संबोधन में गरीबी उन्मूलन, मांग आधारित विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ग्लोबल साउथ सहयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण में भारत के प्रगति की भी जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि भारत पिछले 3 वर्ष में 7% से अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। यूक्रेन में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त करने का अमेरिका का प्रयास विफल रहा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और अधिक विदेशी सैन्य सहायता मांगी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में रासायनिक संयंत्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और हवाई हमले किए। यूक्रेन ने इस क्षेत्र को रूस के युद्ध उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसकी मिसाइलों ने रूस की वायु सुरक्षा को भेद कर निशाना बनाया। हालांकि नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मिसाइलों और ड्रोनों से लगातार हमलों ने यूक्रेन के 8 शहरों को निशाना बनाया। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष आर्थिक दूत किरिल दिमित्रीव ने पश्चिमी मीडिया की उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि बुडापेस्ट में श्री पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन की योजना रद्द कर दी गई है। श्री पेस्कोव ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ना तो राष्ट्रपति ट्रंप और ना ही राष्ट्रपति पुतिन। श्री ट्रंप ने कहा था कि पुतिन के साथ शीघ्र बैठक की योजना स्थगित कर दी गई है क्योंकि वे नहीं चाहते कि ये समय की बर्बादी हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री जेलेंस्की ने आज कहा कि संघर्ष को रोकने का ट्रंप का प्रस्ताव एक अच्छा समझौता है जिससे बातचीत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पिछले सप्ताह अमेरिका और रूस के नेताओं ने फोन पर बातचीत के दौरान बुडापेस्ट में मिलने पर सहमति व्यक्त की थी। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का दूसरा सप्ताह चल रहा है। गजा सरकार के मीडिया कार्यालय का कहना है कि युद्ध विराम के बाद से सहायता सामग्री के केवल 986 ट्रक ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर पाए हैं।
गजा के अधिकारियों ने कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से प्रतिदिन गजा में प्रवेश करने वाले ट्रकों की औसत संख्या केवल 89 है, जो पहले तय किए गए 600 ट्रकों से काफी कम है। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन से मुलाकात की, जो गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के प्रयास में इसराइल का दौरा कर रहे हैं। श्री वेन्स ने कहा कि युद्ध विराम को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका को उम्मीद है कि युद्ध विराम कायम रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने इसराइल से कहा है कि अगर हमास निरस्त्रीकरण से इनकार करता है तो उसे मिटा दिया जाएगा, लेकिन अगर हमास सहयोग करता है तो लड़ाकों को बख्शा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गजा में विदेशी सैनिकों पर कोई भी फैसला इसराइल को लेना है, हालांकि तुर्की इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। हमास ने कल इसराइल के दो नागरिकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंपा, जिन्हें 2 साल से गजा में बंधक बनाकर रखा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रेड क्रॉस ने इन शवों को इसराइल की सेना और शिनबेट सुरक्षा एजेंटों को सौंप दिया। शवों को तल अवीव स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक मेडिसिन केंद्र ले जाया गया। इसराइल के अधिकारियों ने कहा है कि देश के बंधकों को वापस लाने का प्रयास जारी रहेगा। इसराइल का अनुमान है कि गजा में 28 बंधकों के शव रखे गए हैं। हमास ने अब तक 15 शव लौटाए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडोनेशिया के बाली में खाद्य कृषि संगठन से जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन में ये जानकारी दर्ज की गई।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले आकलन के 10वें स्थान से ताजा आकलन में 9वें स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रगति वन संरक्षण, वन्यीकरण और सामुदायिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता रेखांकित करती है। श्री यादव ने कहा कि वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में भारत का 3रा स्थान बना हुआ है। ये पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम से पूरे देश को पौधारोपण की प्रेरणा मिल रही है। इससे भविष्य में हरित और स्वच्छ क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। विश्व दर्पण के लिए आकाशवाणी से मैं अरुण कुमार होरा।
युगांडा में कंपाला गुलू राजमार्ग पर आज एक सड़क दुर्घटना में 63 लोगों की मौत हो गई। युगांडा पुलिस के अनुसार एक ट्रक और एक कार को ओवरटेक करते समय 2 बसें आमने सामने टकरा गईं, जिससे कई वाहन पलट गए। कई अन्य घायल हुए हैं और उन्हें क्रियांदोंगो में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर कोरिया ने आज कई छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित यात्रा से कुछ ही दिन पहले ये मिसाइलें दागी गई हैं। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि मिसाइलें उत्तरी हवांगे प्रांत के जुंगवा से दागी गई और लगभग 350 किलोमीटर दूरी तक गई। श्री ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन के लिए सियोल आने की उम्मीद है। फ्रांसीसी अभियोजक लॉरे बेक्वाउ ने पेरिस की लूवर संग्रहालय में करीब 88 मिलियन यूरो मूल्य के मुकुट के रत्न चोरी किए जाने की जानकारी दी है। इन रत्नों का ऐतिहासिक मूल्य इससे कहीं अधिक है। रविवार की सुबह 4 संदिग्ध लोगों ने क्रेन की मदद से गैलरी जी अपोलोन में सेंध लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया। 100 से ज्यादा जांचकर्ता इस मामले की जांच कर रहे हैं। चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने तूफान फेंगशेन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का खतरा है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के अनुसार फेंगशेन आज सुबह दक्षिण चीन सागर में योंगशियो दाओ से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित था, जहां 33 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। 245 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 40 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ते हुए अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर ने 180 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनाबेल सदरलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेल्जियम की एक अदालत ने 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यूक्रेनी शहरों पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 6 लोगों की मौत। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक रासायनिक संयंत्र पर मिसाइल और हवाई हमले का दावा किया है। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वार्षिक वन वृद्धि में 3रे स्थान पर बना हुआ है। और इंदौर में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।